ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल के हीरक जयंती उत्सव के अवसर पर किया गया विशेष समारोह आयोजित रेडियो नेपाल आवाजहीनों की आवाज बनने और गणतंत्र को संस्थागत करने में सक्रिय भूमिका निभाएगा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का विश्वास। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और थाईलैंड के प्रधानमंत्री फेटो थोंग थान सीनावात्रा के बीच वार्ता। संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले दिनों में सहयोग बढ़ने की दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की आशा। नेपाल और थाईलैंड के बीच 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और गाजा क्षेत्र में इसराइल द्वारा किए गए नवीनतम हमले में कम से कम 19 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल ने आज अपना 75वां स्थापना दिवस हीरक जयंती एक विशेष समारोह के साथ मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संस्था को आवाजहीनों की आवाज और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि रेडियो नेपाल को नागरिक केन्द्रित, स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के नाम पर हिंसा और तोड़फोड़ कभी स्वीकार्य नहीं है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि रेडियो नेपाल अपने प्रसारण क्षेत्र का विस्तार करते हुए जनता के प्रति जवाबदेह रहेगा। पीएसबी नेपाल के अध्यक्ष डॉ महेंद्र विष्ट ने संस्था की विरासत को आगे बढ़ाने और नागरिकों को प्राथमिकता देने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने हीरक स्तंभ का अनावरण किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सृजन सम्मान से रामकृष्ण दुआल और नंद कृष्ण जोशी को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ संगीतकार रत्न बेहोशी, मोहन प्रसाद जोशी और रत्ना कुमारी गुरुंग को सृजन सम्मान दिया गया। 25 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले 22 कर्मचारियों को दीर्घ सेवा पदक प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आधुनिक संगीत प्रतियोगिता 2081 के विजेताओं परेश राय प्रथम, दीपिका श्रेष्ठ द्वितीय और पूर्ण बहादुर बी के तृतीय को पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार चंडी प्रसाद काफले और सर्वश्रेष्ठ रचनाकार होम न्योपानी को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रेडियो नेपाल की पत्रिका झनकार और रेडियो नेपाल के 75 वर्ष 101 सृजनकर्ता पुस्तक का विमोचन किया गया। देश भर के क्षेत्रीय प्रसारण कार्यालयों में भी समारोह आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने थाईलैंड की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पे थोंग थान सीनावात के साथ वार्ता के बाद आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि इस यात्रा से संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ओली ने थाईलैंड से नेपाल के होटल व्यवसाय और एयरलाइंस सेक्टर में निवेश बढ़ाने की उम्मीद जताई। उन्होंने थाई प्रधानमंत्री सीनावात को नेपाल आने का आमंत्रण दिया और विश्वास जताया कि वो जल्द ही काठमांडू का दौरा करेंगे। थाई प्रधानमंत्री सीनावात ने कहा कि थाईलैंड नेपाल में एविएशन और पर्यटन क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाएगा। उन्होंने काठमांडू में थाई एयरवेज की उड़ानों की संख्या बढ़ाने और लुम्बिनी में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर सकारात्मक रुख दिखाया। इससे पहले दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें सरकारी स्तर पर संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में 2 समझौते, निजी क्षेत्र के बीच 6 अन्य समझौते, अन्य आयोजन शामिल है। प्रधानमंत्री ओली ने थाई नेपाल मैत्री संघ के अध्यक्ष और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थाई नागरिक भिटिद नान रोजान पानीच से भी शिष्टाचार भेंट की। थाईलैंड के राजा बजीरा लोगकर्ण से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज भेंटवार्ता की। परराष्ट्र मंत्री डॉ राजू राणा देवबा ने बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक को एक जन केन्द्रित, विकासोन्मुख और जीवंत संस्था के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 3रे बिम्स्टेक डायलॉग को संबोधित करते हुए मंत्री डॉ राणा ने कहा कि बिम्स्टेक को क्षेत्र की जनता की आशाओं, अपेक्षाओं और चुनौतियों का समाधान करने वाला एक सक्रिय संगठन बनना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने विम्स्टेक को एक मजबूत साझेदारी मंच में बदलने की संभावना देखी है। इसके लिए सबसे पहले क्षेत्रीय एकता और सामूहिक सहयोग की भावना आवश्यक है। मंत्री डॉ राणा ने कहा कि बंगाल के खाड़ी क्षेत्र और उसके बाहर भी क्षेत्रीय शांति, एकता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में विम्स्टेक की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नेपाल विम्स्टेक के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य क्षेत्र की सामूहिक समृद्धि है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। गृहमंत्री रमेश लेखक ने चैत 15 गते शुक्रवार को काठमांडू के तीनकुने में संचार माध्यमों और पत्रकारों पर हुए हिंसक हमले की निष्पक्ष जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है। नेपाल पत्रकार महासंघ के महासचिव रामप्रसाद दाहाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज गृह मंत्रालय में ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद गृहमंत्री लेखक ने कहा कि सरकार इस अराजक और सिद्धांत विहीन हिंसा को लेकर गंभीर है। गृहमंत्री ने कहा, हिंसक प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों के घरों में आगजनी, मीडिया हाउस और संचार कर्मियों को निशाना बनाने की घटनाओं की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तीनकुने घटना में मारे गए पत्रकार सुरेश रजक और अन्य घायल पत्रकारों के मामले पर सरकार की गंभीर चिंता व्यक्त की। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर रही है। नेपाल पत्रकार महासंघ ने घटना की त्वरित जांच, पीड़ितों को न्याय और मीडिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। तीनकुने घटना में जान गंवाने वाले दो लोगों के परिवार को सरकार ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है। सिंह दरबार स्थित मंत्रालय में आज हुई मंत्री स्तरीय बैठक में यह निर्णय किया गया। तीनकुने घटना में मारे गए पत्रकार सुरेश रजक और सवीन महर्जन के परिवार को प्रत्येक को 10 लाख रुपए देने का निर्णय किया गया है। ये जानकारी गृहमंत्री रमेश लेखक के सचिवालय ने दी। तीनकुने में इसी चैत 15 गति को हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान आगजनी की घटना में एवेन्यूज टेलीविजन के पत्रकार सुरेश रजक मृत पाए गए थे। वहीं महर्जन की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई थी। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा है कि नेपाली महिलाओं द्वारा किया गया बलिदानपूर्ण आंदोलन न केवल नेपाल बल्कि विश्व राजनीति के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना है। बांके के कोहलपुर में आज अखिल नेपाल महिला संघ क्रांतिकारी लुम्बिनी के दूसरे प्रदेश सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि जिन महिलाओं ने कल तक क्रांति का नेतृत्व और रक्षा की, अब समाजवादी क्रांति का नेतृत्व करने का समय आ गया है। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता ने निर्माण सामग्री के प्रबंधन और नियमन से संबंधित विधेयक को यथाशीघ्र आगे बढ़ाने का संसदीय समिति से अनुरोध किया है। प्रतिनिधि सभा की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति की आज की बैठक में विधेयक पर हुए सैद्धांतिक चर्चा में मंत्री गुप्ता ने बताया कि इस विधेयक के माध्यम से नदीजन्य और खनिजन्य निर्माण सामग्री के नियमन, क्रसर तथा बालू प्रसंस्करण उद्योगों के पंजीकरण, नियमन, रद्दीकरण और कर शुल्क संबंधी अनिश्चितताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायली सेना द्वारा गजा पट्टी पर किए गए नवीनतम हवाई हमले में कम से कम 19 फलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों और स्वास्थ्य सूत्रों के अनुसार हमले में महिलाओं और बच्चों सहित कई निर्दोष लोग भी शामिल हैं। हमला गजा के अल जुवानी और अल शाती शरणार्थी शिविर के नजदीक हुआ, जहां कई आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया। फलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मृतकों में 7 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल के हीरक जयंती उत्सव के अवसर पर किया गया विशेष समारोह आयोजित रेडियो नेपाल आवाजहीनों की आवाज बनने और गणतंत्र को संस्थागत करने में सक्रिय भूमिका निभाएगा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का विश्वास। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और थाईलैंड के प्रधानमंत्री फेटो थोंग थान सिनावात्रा के बीच वार्ता संस्कृति पर्यटन शिक्षा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले दिनों में सहयोग बढ़ने की दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की आशा। नेपाल और थाईलैंड के बीच 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और गाजा क्षेत्र में इसराइल द्वारा किए गए नवीनतम हमले में कम से कम 19 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।